दिन भर 24 अगस्त दिन गुरुवार सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, भारत में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। क्या अब भारत का आम नागरिक आधार कार्ड के लिए अपनी पहचान देने से मना कर सकता है?
हाँ, आप इनकार कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक बार कहा भी है कि बेनिफिट्स लेने के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है।
हरियाणा में पंचकुला की सीबीआई अदालत में गुरमीत राम रहीम के खिलाफ बलात्कार के मामले में सीबीआई अदालत के फैसले से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम।
बहुत तादाद में 1,00,000 के करीब लोग खड़े हैं, वो कोर्ट से काफी दूर जीरकपुर रोड पे हैं, लेकिन कोर्ट के आसपास लोग अभी भी हैं, पुलिस ने नहीं हटा पाई।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने एक अहम फैसले में कहा कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। अदालत के इस फैसले की व्याख्या केंद्र सरकार के लिए झटके के तौर पर की जा रही है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि निजता मौलिक अधिकार होना चाहिए, लेकिन जायज पाबंदियों के साथ। उन्होंने ये भी कहा कि इस फैसले से आधार कार्ड स्कीम प्रभावित नहीं होगी। आधार कार्ड को बैंक खातों समेत कई सेवाओं के साथ अनिवार्य रूप से जोड़ने के सरकार के फैसले को भी चुनौती दी गई है। आधार कार्ड के लिए इकट्ठा किए गए डेटा की निजता को लेकर भी कई बार सवाल उठते रहे हैं। इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि ये फैसला फासीवादी ताकतों के लिए बड़ा झटका है और बीजेपी की विचारधारा को खारिज करता है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देबा 5 दिन के दौरे पर भारत आए हुए हैं। आज उनके दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी औपचारिक बैठक में दोनों देशों के बीच 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने नेपाल में पुनर्निर्माण के लिए सहायता देने की घोषणा की है। ये राशि आवास और स्वास्थ्य, शिक्षा और पुरातात्विक विरासत के पुनर्निर्माण के लिए खर्च की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में ये कहा।
नेपाल में आई बाढ़ के संदर्भ में बात करें तो मैंने भारत की तरफ से हर संभव सहायता का प्रस्ताव फिर दोहराया है। हम इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ नियंत्रण पर कोऑर्डिनेशन और कंसल्टेशन को और मजबूत किया जाए और एक दूसरे के हितों को ध्यान में रखते हुए इसके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पर सोचा जाए।
ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। म्यांमार में अंतर्राष्ट्रीय आयोग ने सरकार को अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुस्लिमों पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की सलाह दी है। इस आयोग के प्रमुख पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान ने कहा कि सरकार को रोहिंग्या मुस्लिमों के लिए आवाजाही पर रोक हटानी चाहिए और उन्हें म्यांमार की नागरिकता देने का रास्ता भी खोलना चाहिए। एक लंबी रिपोर्ट में आयोग ने कहा है कि म्यांमार की सरकार को रोहिंग्या मुस्लिमों के साथ बिना हिंसा के बातचीत करनी चाहिए और उन्हें कट्टरपंथियों के प्रभाव में आने के खतरे को भी रोकना चाहिए। म्यांमार के रखिन प्रांत में चरमपंथ रोधी अभियान शुरू होने के बाद से 87,000 रोहिंग्या मुस्लिम लोग म्यांमार छोड़कर भाग चुके हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने रूस पर आरोप लगाया है कि ताकत के बल पर रूस अंतर्राष्ट्रीय सीमा में तब्दीली करना चाहता है। यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जेम्स मैटिस ने कहा कि रूस अंतर्राष्ट्रीय संधियों का सम्मान नहीं कर पाया है। जेम्स मैटिस ने रूस को यूक्रेन से क्राइमिया के अलग होने और पूर्वी यूक्रेन में विद्रोहियों को रूस के समर्थन के लिए चेतावनी दी है। जेम्स मैटिस ने कहा कि वो यूक्रेन को बचाव के लिए हथियार भेजने के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं।
Unfortunately, Russia is not adhering to the letter, much less to spirit.
दुर्भाग्यपूर्ण है कि रूस ने अंतर्राष्ट्रीय संधियों का सम्मान नहीं किया है। अमेरिका और हमारे सहयोगी रूस पर मिन्स्क समझौते का सम्मान करने का दबाव बनाते रहेंगे और जब तक मॉस्को अपने कदम पीछे नहीं लेता तब तक हमारे प्रतिबंध जारी रहेंगे। ये थे जेम्स मैटिस के शब्द। स्पेन की अदालत ने पिछले हफ्ते कैटालोनिया में हुए हमले के सिलसिले में पकड़े गए 4 लोगों को कुछ शर्तों के साथ रिहा कर दिया है। इनमें से पकड़े गए सालेह अल खरीब रिपोलिये शहर में एक इंटरनेट कैफे चलाता था जहां पर हमले के अधिकतर संदिग्ध रहा करते थे। पुलिस की कार्रवाई में संदिग्ध चरमपंथी संगठन के 8 सदस्यों की मौत हो गई थी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से शाम की सभा दिन भर सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर और अपने मोबाइल फोन पर फेसबुक पर भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। कार्यक्रम की शुरुआत भारत के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से कर रहे हैं जिसमें आज ये कहा गया है कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है। इस फैसले के अलग अलग पहलुओं का करेंगे हम विश्लेषण, लेकिन पहले आइए ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, किन शब्दों में कहा है। फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
मंगलवार के बाद एक बार फिर सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ टिकी थीं। अदालत को फैसला सुनाना था कि प्राइवेसी या निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं। ट्रिपल तलाक पर बटे फैसले से अलग देश की सबसे ऊंची अदालत के 9 जजों की खंडपीठ ने एक स्वर में कहा,
राइट टू प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आता है।
मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने आगे कहा,
9 जजों की खंडपीठ ने पुराने जो फैसले थे जिसमें कहीं कहीं ये लिखा था कि भाई ये राइट टू प्राइवेसी मौलिक अधिकार नहीं है, उसको ओवररूल कर दिया है, बोला है कि मौलिक अधिकार है।
सुप्रीम कोर्ट की पुरानी बेंचों ने पहले 1954 में एमपी शर्मा मामले में और फिर 1962 में खड़क सिंह केस में निजता को मौलिक अधिकार नहीं माना था। अदालत के फैसले को हुकूमत के लिए बड़ा धक्का माना जा रहा है। निजता यानी प्राइवेसी पर बहस तब शुरू हुई जब सरकार ने आधार कार्ड को ज्यादातर सुविधाओं के लिए जरूरी बनाना शुरू कर दिया। आधार को कानूनी तौर पर लागू करने की कोशिश कर रही केंद्र सरकार के वकीलों ने कोर्ट में तर्क दिया कि हो सकता है कि आधार लोगों की निजता में दखल देता हो, लेकिन क्या निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है? अदालत ने आज जो फैसला सुनाया है उसका क्या असर पड़ सकता है, जैसे आधार स्कीम पर इसका क्या असर होगा? वकील आर के कपूर,
यस, बाय इंसिस्टिंग दैट इट इज अ फंडामेंटल राइट, इसीलिए जो आधार कार्ड के थ्रू इन्फॉर्मेशन रिलीज होनी है वो राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आने में इंडिविजुअल सिटीजन इसको डिनाई कर सकता है, मतलब इसको लिखने से मना कर सकता है।
आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन और निजी स्वतंत्रता अलग नहीं है। साथ ही ये भी साफ हुआ कि प्राइवेसी की बुनियाद निजी रुझानों या झुकाव को बचाना, पारिवारिक जीवन की पवित्रता, शादी, बच्चे पैदा करना, घर और यौन रुझान जैसी चीजें भी उसमें शामिल हैं। एकांत में अकेले रहने का अधिकार भी प्राइवेसी का अधिकार है। अब तक इस निजता के अधिकार को चैलेंज करती दिख रही केंद्र सरकार ने अपना रुख बदल लिया है और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,
ये मेरा आधार कार्ड है, आपके पास भी है, व्हाट डज इट कंटेन, मेरा नाम, आई एम ए मेल एंड माई परमानेंट पटना एड्रेस, इट डज नॉट कंटेन माई फादर्स नेम, माई मदर्स नेम, माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन।
इसमें क्या लिखा है? मेरा नाम, मेरी उम्र, पटना का मेरा परमानेंट पता। इसमें मेरे माँ बाप का नाम, मेरी डिग्री नहीं लिखा है। इसमें मेरी बीमारी और मेरी आय, मेरा धर्म और मेरी जाति का जिक्र नहीं है। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके आधार पर मेरी प्रोफाइलिंग की जा सकती है। इसमें सिर्फ मेरी पुतलियों और मेरी उंगलियों की लकीरों की तस्वीरें ली गई हैं। ये थे रविशंकर प्रसाद के शब्द। हालांकि समाज का एक बड़ा वर्ग सवाल उठाता रहा है कि सरकारी स्कीमों का फायदा लेने के लिए इन हाथों की लकीरों या पुतलियों की तस्वीर लेने की क्या जरूरत है। इधर इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी सरकार कह रही है कि कांग्रेस को निजता के अधिकारों की बात करने का कोई हक नहीं है क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया था। राहुल गांधी ने आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बीजेपी की कथित फांसीवादी सोच की हार बताया था। फैसल मोहम्मद अली, बीबीसी दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर नेताओं की विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के रिएक्शंस हम आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन इससे पहले अभी जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में सुना, सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार करार दिया है। इस फैसले के अलग अलग पहलुओं को समझने के लिए बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली ने ही सिटीजन फोरम फॉर सिविल लिबर्टी के गोपाल कृष्ण, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव अशोक अरोड़ा और वरिष्ठ वकील एनएम पोपली से बात की।
सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा अरोड़ा साहब कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको अगर संक्षिप्त शब्दों में समझा सके आम आदमी की भाषा में क्या है वो।
आम आदमी की भाषा में यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कह दिया कि ये जो राइट टू प्राइवेसी है इट इज अ फंडामेंटल राइट, जो आर्टिकल 21 में जो राइट टू लिव विद डिग्निटी कहते हैं, तो वो डिग्निटी में ये शामिल होता है कि प्राइवेसी की आप ऐसे ही किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इसलिए इसका बेसिस जो है बहुत स्ट्रांग हो गया कि फंडामेंटल राइट बन गया। लेकिन इसके साथ ही आपको ये बताना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी राइट में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होती है वो लग सकती है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कुछ होते हैं कि मोस्ट प्राइवेट मोस्ट इंटीमेट, जैसे सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस होते हैं, या आप यूँ सोचिए कि किसी व्यक्ति ने कुछ ही मर्डर केस में किसी का डिफेंस ये है कि उसके फला व्यक्ति से संबंध थे, तो इन्वेस्टिगेशन पे ऐसा कोई बार नहीं है। जो मोस्ट इंटीमेट केसेस में भी जो राइट टू प्राइवेसी है उसमें इन्वेस्टिगेशन हो सकता है अगर वो रेलिवेंट है। दूसरी बात ये नहीं कि आते जाते कोई आपसे पूछ ले कि जी आपने कार्ड में कितनी पेमेंट करी है और आप जा कर रहे हैं, आप छुट्टियां कब बिताएंगे। और इसकी एक महत्वता ये इसलिए बताना सबसे जरूरी है कि रीजनेबल क्यों है। अगर जैसे बायोमेट्रिक्स की बात है या कोई राशन की या कोई भी सोशल स्कीम आती है, उस सोशल स्कीम में अगर आप कार्ड जो है अगर आप बायोमेट्रिक या फिंगरप्रिंट या नहीं लेते हैं तो क्या होगा, आप देखिए 20 करोड़ लोग को अगर खाना नहीं मिल रहा है तो एक आदमी राशन 30 बार ले रहा है और एक आदमी को एक बार भी नहीं मिल रहा है। इसलिए राइट टू प्राइवेसी में भी ऐसी चीज जो रीजनेबल है वो रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। क्रेडिट कार्ड है, अब आप मेरे से नहीं पूछ सकते कि आपने क्रेडिट कार्ड में क्या पेमेंट करी है, या पुलिस वाला नहीं पूछ सकता, लेकिन जब इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास जाएगा तो पूछ सकता है जी क्रेडिट कार्ड में क्या पेमेंट करी है मुझे दिखाइए, इतनी सी बात।
डॉक्टर गोपाल कृष्णा, जाहिर है कि एक लॉ को कई तरह से उसको इंटरप्रेट किया जाएगा, आप जो है इसको किस तरह से देख रहे हैं?
मौलिक अधिकार इसलिए नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मौलिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट उसको रिकॉग्नाइज करता है। दूसरा, जो बात सरकार के द्वारा कहा जा रहा है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात, सच्चाई ये है जुरिस्प्रूडेंशियल इमेजिनेशन के हिसाब से ये बात स्पष्ट है कि राइट टू प्राइवेसी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का हिस्सा है, जीवन जीने के अधिकार का हिस्सा है, और जीवन जीने का अधिकार एक एब्सोल्यूट राइट है। एक्सेप्शनल केस टू केस बेसिस में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि पूरी जनसंख्या पर आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा दें। आधार के ही केस में ये फैसला आया है, जब अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि आधार पे फैसला तब तक नहीं आ सकता है जब तक कि निजता के अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं है ये तय नहीं हो जाता है। ये तो तय ही था, सरकार को ये शक था, सरकार के ये शक को बेबुनियाद बताया है सुप्रीम कोर्ट ने।
पोपली साहब, जैसा कि अरोड़ा साहब ये कह रहे थे कि आप अगर किसी की उंगलियों के निशान लिए जा रहे हैं या आंखों के निशान लिए जा रहे हैं तो उसका जो अधिकार है उसका हनन ना हो, मतलब वो लीक ना हो जाए, लेकिन बहुत सारे केसेस इस बार सामने आए हैं, बहुत सारे केसेस हाल में हम पढ़ते रहे कि वो लीक हो जाते हैं, तो आखिर उसके लिए कौन जिम्मेदार है, सरकार कौन?
उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, और अपराध को रोकने के लिए अगर कोई ऐसा स्टेप सरकार उठाती है तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की परिभाषा के अंदर आएगा।
ये बताइए अरोड़ा साहब कि इसके बाद क्या होगा, मतलब ये तो फैसला आ गया, अब एक निजता के अधिकार, लेकिन आधार से भी कहीं जुड़ा हुआ ये?
आधार से जुड़ा हुआ पक्का है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आधार से जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी कोर्ट ने सिर्फ यही डिसाइड किया है कि ये फंडामेंटल राइट है या नहीं है, अब इसके आधार पे आधार का केस डिसाइड होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने अभी बस इतना तय किया है कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, और अब इसकी बुनियाद पर आधार कार्ड से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट अपना आगे का रुख तय करेगा। ये थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव अशोक अरोड़ा। यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि निजता के अधिकार पर मौलिक अधिकार की मुहर लगाने से फर्क क्या पड़ेगा। बीबीसी हिंदी के रेडियो संपादक राजेश जोशी ने मानवाधिकार कार्यकर्ता और वरिष्ठ वकील एनडी पंचोली से बात करके यही जानना चाहा।
इससे फर्क ये पड़ेगा कि जो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं नहीं शेयर करना चाहूंगा, ना तो सरकार से शेयर करना चाहूंगा, ना किसी और से शेयर करना चाहूंगा, जो सिर्फ मेरे निजी लाइफ के अंतर्गत आती हैं। तो अगर सरकार या कोई भी इंस्टीट्यूशन, सरकारी इंस्टीट्यूशन ये कहता है कि भाई आप अपने बेडरूम में क्या कर रहे थे, तो वो मुझसे नहीं पूछ सकते, या और भी कोई वो मेरे बैंक अकाउंट के बारे में या और किसी चीज के बारे में वो बगैर किसी उद्देश्य के अगर वो पूछना चाहे तो मैं मना कर सकता हूँ कि भाई ये मेरी निजता का अधिकार है, मैं आपको नहीं दूंगा। जो ऑलरेडी कानून बने हुए हैं इनकम टैक्स वगैरह, उसके अंतर्गत तो वो ठीक है।
तो इसका क्या ये मतलब भी हुआ कि अगर सरकार एक नागरिक से कहती है कि अपनी आंखों की फोटो हमें दीजिए या अपनी उंगलियों की छाप हमें दीजिए, हम आपका आधार कार्ड बनाएंगे और ये आधार कार्ड हर चीज के लिए जरूरी होगा, तो नागरिक के तौर पे क्या मैं इनकार कर सकता हूँ?
हाँ, आप इनकार कर सकते हैं।
लेकिन अभी एक बड़ी बेंच उसकी सुनवाई करने जा रही है। एक सरकार का ये कहना है कि सब्सिडी देने के लिए जो जरूरतमंद हैं, सही लोगों तक अगर ये सब्सिडी पहुंचानी है तो आधार कार्ड होना जरूरी है, ताकि डुप्लीकेसी न हो, गलत लोगों तक फायदा न पहुंच जाए। ये तर्क देकर के क्या सरकार आधार कार्ड को आवश्यक कर सकती है?
सुप्रीम कोर्ट की ने तो एक बार कहा भी है कि बेनिफिट्स लेने के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। अब आधार कार्ड में आप देखिए, जो जरूरी है का आप अपना पता देंगे, जिनके पास रहने को मकान ही नहीं है, जिनके पास जो सड़क पर रहते हैं या झुग्गियों में झोपड़ी में रहते हैं या अनऑथोराइज कॉलोनी में रहते हैं या जिनका कोई एड्रेस है ही नहीं, अगर उनको कोई सब्सिडी चाहिए तो आधार कार्ड तो बनेगा नहीं उनका, क्योंकि हर आधार कार्ड में आपको डेफिनेट एड्रेस चाहिए। अब उनके पास तो एड्रेस है नहीं, तो इसका मतलब ये कि जो जरूरीमंद लोग हैं उनको आप वंचित कर रहे हैं आधार कार्ड के बहाने से।
तो लेकिन सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों में क्या ये कह सकती है कि आपका ये जो मूलभूत अधिकार है, मौलिक अधिकार है निजता का, इसको सरकार हटा ले सकती है, छीन सकती है?
इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल ही नहीं उठता।
मान लीजिए अगर कोई एक आदमी है जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है और वो पकड़ा जाता है, वो कहता है कि वो राइट टू प्राइवेसी मेरा है इसलिए मैं सरकार को इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, उस मामले में क्या होगा?
अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो टेररिस्ट है, जो आतंकवादी है, उनको पकड़ने के लिए कोई रुकावट तो नहीं है ना। ये तो हर जो अपराधी है, जो अक्यूज्ड है, अभियोगी है, जिसको खिलाफ कोई अभियोग लगा है, आर्टिकल 20 क्लास 3 में ये है कि उसको ही हैज अ राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी उसको सरकार मजबूर नहीं कर सकती कि आप अपने खिलाफ कुछ बोलिए दीजिए। ये सरकार का काम है सबूत लेना। इसके लिए तो पहले से ही जो सुरक्षा का या जो इसके टेररिज्म के मामले में एक अभियोगी के क्या अधिकार हैं, तो उसका तो पहला अधिकार यही है कि वो अपने बारे में कुछ नहीं सरकार को बताएगा, सरकार अपने आप ढूंढेगी। आप देखिए ना, पुलिस पूछती है, अभियोगी से पूछती है, टेररिस्ट से पूछती है, बयान लेती है ना, उस बयान की कोई कानून में मान्यता नहीं होती, क्योंकि पुलिस के सामने कोई भी दिया हुआ बयान वो कोर्ट में मान्य नहीं है, उसके इंडिपेंडेंट एविडेंस उसको कलेक्ट करनी होती है। तो ये कहना कि सरकार ये वो कोई टेररिस्ट वो कहेगा कि भाई मैं तो नहीं देता, वो तो पहले से ही कानून के अंदर है कि वो बाध्य नहीं कर सकती सरकार उसको।
ये थे मानवाधिकार कार्यकर्ता और वरिष्ठ वकील एनडी पंचोली, और उनसे बात कर रहे थे राजेश जोशी। और आइए अब सुनते हैं अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर किस तरह प्रतिक्रिया दी है। बता रहे हैं कुलदीप मिश्र।
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन माकपा नेता सीताराम येचुरी ने इसे सरकार का यूटर्न कहा है। येचुरी ने ट्विटर पर लिखा कि निजता के अधिकार पर सरकार के यूटर्न की कोशिश वाली सरकारी मूर्खता मोदी और शाह की चुप्पी से और बढ़ गई है। इससे पहले येचुरी ने कहा था कि हम आधार को अनिवार्य किए जाने और विदेशी कॉरपोरेट्स की ओर से डेटा के गलत इस्तेमाल का विरोध करते रहे हैं, ये फैसला हमारे अधिकार को सुरक्षित रखने की राह बनाएगा। फैसला आने के बाद कई राजनीतिक दलों ने इसका स्वागत किया और कुछ ने इस मामले में केंद्र सरकार के रुख के लिए उसकी आलोचना की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष ने एक साथ निजता के अधिकार में कटौती की भाजपा सरकार की अहंकारी कोशिशों के खिलाफ आवाज उठाई थी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे फांसीवादी ताकतों की हार और प्रत्येक भारतीय की जीत बताया। यूपीए के समय वित्त मंत्री रहे कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने ट्विटर पर लिखा कि निजता एक मौलिक अधिकार है और साल 1947 में जो आजादी हासिल की गई थी वो अब समृद्ध और बड़ी हो गई है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए ट्वीट किया है। इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर लिखा, मेरे पास निजता का अधिकार है और अब यह एक मौलिक अधिकार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट को शुक्रिया कहा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने इसे निजी आजादी और नागरिक स्वतंत्रता की दिशा में बड़ा कदम बताया है।
बीबीसी इंडिया बोल।
निजता की रक्षा कितनी जरूरी? सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया है, लेकिन आधार कार्ड के लिए पुतलियों की फोटो और उंगलियों के निशान चाहिए। आपके लिए निजता का अधिकार ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर आधार कार्ड। इस बार बीबीसी इंडिया बोल में चर्चा इसी विषय पर। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार 26 अगस्त शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811 7000 और 1811 7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
बीबीसी हिंदी से शाम की सभा दिन भर सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। हरियाणा में पंचकुला की सीबीआई अदालत में डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम के खिलाफ बलात्कार के मामले में कल यानी शुक्रवार को आने वाले फैसले से एक दिन पहले पंजाब और हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसके बावजूद गुरमीत राम रहीम के समर्थक बड़ी संख्या में पंचकुला पहुंच चुके हैं और पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए पुलिस प्रमुख को फटकार लगाई है। और जानकारी के साथ पंचकुला से रविंदर सिंह रॉबिन।
मैं इस वक्त पंचकुला में खड़ा हूँ, जहाँ सीबीआई कोर्ट के सामने, जहाँ पे गुरमीत राम रहीम जो सिरसा डेरा मुखी हैं उनको कल पेश होना है और उनके बारे में फैसला सुनाया जाना एक केस में। पुलिस ने पूरी तरह से एरिया को कॉर्डन ऑफ कर रखा है, एक कोर्ट में तब्दील कर दिया है। यहाँ पे बहुत सारे लोग कोर्ट में सुबह घुस आए थे, कोई 10-12 हजार के करीब उस कोर्ट कम्प्लेक्स में, लेकिन अभी उनको तो कोर्ट से कुछ दूरी पर रखा गया है। हालांकि धारा 144 लग चुकी है यहाँ पे, लेकिन लोगों का जमावड़ है। जो लोग बहुत तादाद में 1 लाख के करीब लोग खड़े हैं वो कोर्ट से काफी दूर जीरकपुर रोड पे हैं, लेकिन कोर्ट के आसपास लोग अभी भी हैं, पुलिस ने नहीं हटा पाई। हालांकि कोर्ट की हदायत है कि पुलिस को, हरियाणा पुलिस को, कि जब धारा 144 लगी है तो इतने लोग यहां पे क्यों इकट्ठे हो गए हैं। अब कोर्ट ने डेरा मुखी को ये कहा है कि वो अपने फॉलोअर्स को, अनुयायियों को यहां से वापस बुलाए। मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त पंचकुला में आना कोई इतना आसान नहीं है। जो एक सेक्टर 17 से पंचकुला जाना 15-20 मिनट का रास्ता है, वो काफी देर में, काफी टाइम लगता है वहां पहुंचने के लिए। चप्पे चप्पे पे पुलिस है पूरे पंजाब में। मैं अमृतसर से चला हूँ सुबह 11 बजे से, लेकिन यहाँ पे अभी पहुंचा हूँ। पूरे रास्ते में पुलिस हर जगह पे चेकिंग करती है और उतार के, और ये पूरे कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस यहाँ पे है। लेकिन कल क्या होगा उसको लेके अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग चल रही है कि किस तरह से इसको और फोर्टिफाइड किया जाए।
ये थे पंचकुला से रविंदर सिंह रॉबिन, हमारे सहयोगी। और अब बारी है श्रोताओं की, आपकी चिट्ठियों की,
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का, और मेरे साथ हैं इंदु पांडे।
नमस्कार, मेरा भी।
नमस्कार इंदु पांडे का भी, और उनके हाथ में बहुत सारे ईमेल हैं और चिट्ठियां हैं। शुरुआत मुझे लगता है कि आप ईमेल से कर रही हैं।
जी जरूर, क्योंकि पहला मेल है कुछ इतना खास। संगीत कुमार सानू है ये, गंज रघौली दरभंगा बिहार से। लिखते हैं कि आज मेरा 19वां जन्मदिन है और मैं चाहता हूँ कि बीबीसी हिंदी की तरफ से आप मुझे बर्थडे विश करें।
क्या बात है, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। संगीत कुमार सानू, इनका नाम भी संगीतमय है और हमारे श्रोता है, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मुबारक हो कि आप 19 वसंत देख चुके हैं। उम्र दराज हो आप, यानी आपकी उम्र बहुत लंबी हो।
और सलमान रावी की रिपोर्ट्स को बहुत पसंद करते हैं ये।
जी हाँ, सलमान रावी हमारे साथी रेलगाड़ी में बैठ के कई जगहों पे गए और उन्होंने वहां से रिपोर्टें की। मुझे लगता है दूसरी और भी चिट्ठियां आई होंगी।
अगला मेल है सौरभ ओझा का। लिखते हैं कि कृपया उत्तर प्रदेश में हो रहे शिक्षा मित्र लोगों के इतने बड़े आंदोलन को भी कुछ जगह देने की कृपा करें अपने कार्यक्रमों में।
ये आपने बहुत सही बात कही, हम लगातार इसके बारे में सोचते आ रहे थे। थोड़ा बहुत कभी कभी हुआ है, लेकिन एक अच्छे ढंग से शिक्षा मित्रों की जो समस्याएं हैं, जो उनका आंदोलन है, उस पर हम जरूर कोशिश करेंगे कि आप तक कोई रिपोर्टें पहुंचाई जाएं।
और ये हैं जोरहाट असम से प्रदीप सिंह। लिखते हैं कि आपके समाचार बहुत अच्छे और रोचक लगे, लेकिन सलमान रावी की विशेष रिपोर्ट सुबह और शाम दोनों कार्यक्रम में प्रसारित की गई, जो कि बहुत अटपटी लगी।
देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप असम जोरहाट से हमें चिट्ठी लिख रहे हैं, हमारे कार्यक्रम सुनते हैं, इसका शुक्रिया। सलमान रावी की रिपोर्ट जो सुबह और शाम दोनों आपने सुनी, उसकी वजह ये होती है कि बहुत सारे हमारे श्रोता सिर्फ सुबह के प्रोग्राम सुनते हैं और बहुत सारे श्रोता सिर्फ शाम के प्रोग्राम सुनते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुबह भी और शाम दोनों प्रोग्राम सुनते हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं जो विशेष रिपोर्टें होती हैं वो सुबह के प्रोग्राम में अगर प्रसारित की गई हो तो शाम को रिपीट की जाए, और अगर शाम के रिपोर्ट में प्रसारित हो तो सुबह एक बार जरूर प्रसारित की जाए।
और ये नाथुराम सेन है, लिखते हैं कि अब कभी कभी ऐसा लगता है कि आप अपने बुनियादी सिद्धांत और विचारधारा को भुलाकर समाचार नहीं बल्कि अपने विचार प्रकट कर रहे हैं।
अरे ये तो बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं।
इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, उदाहरण के तौर पर धार्मिक या सांप्रदायिक मुद्दों से संबंधित खबरों को आप बड़ी रुचि के साथ सुनाते हैं।
देखिए इन्होंने कोई विशेष उदाहरण नहीं दिया है, ये कहा है कि धार्मिक और सांप्रदायिक मुद्दों को हम रुचि के साथ प्रसारित करते हैं। देखिए नाथुराम जी, पत्रकार का धर्म ये होता है कि जो समाज में चीज़ें हो रही हों उनको आप तक उसी रूप में पहुंचाएं, उन पर रिपोर्ट करें। अगर तनाव है, विद्वेष है या यकजहती है, यानी आपस में मिलीजुली जो संस्कृति है वो पनप रही है, हम दोनों स्थितियों में आप तक रिपोर्ट सही पहुंचाते हैं, सही तस्वीर पहुंचाते हैं। आप ये तो कतई नहीं चाहेंगे बीबीसी से कि कहीं पर कोई खबर हो रही हो और हम सिर्फ इस वजह से उसे छोड़ दें कि ये धार्मिक मामला है, इस पर क्यों रिपोर्ट करें। आशा है आप मेरी बात समझ रहे होंगे।
और अगला पोस्टकार्ड हम लेते हैं, ये है हमारे साथ प्रशांत कुमार पाणिग्रही झारखंड से, इन्होंने ये पोस्टकार्ड हमें भेजा है। कुछ खास तो नहीं लेकिन जितने प्रेजेंटर हैं बीबीसी के सबके नाम इन्होंने लिखे।
क्या बात है, ये मोहब्बत है इनकी, ये इनका जाहिर करता है ये चिट्ठी। एक तो बहुत ही सुंदर लेख में लिखी गई है कि कितने गौर से हमारे कार्यक्रमों को ये सुनते हैं, जो हम बोलते हैं उनको कितने गौर से ये समझते हैं, आत्मसात करते हैं। हमारे सबके नाम याद हो गए हैं, अब सब नाम लेना तो मुझे लगता है कि समय नहीं है, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और ये पोस्टकार्ड हमारे पास आया है मुरारी साह गोधरा से, किशनगंज बिहार से। ये लिखते हैं कि भाई 11 अगस्त को विवेचना जो रेहान साहब ने की थी फूलन देवी पे, वो आधी अधूरी लगी क्योंकि पूरी जानकारी इनके हिसाब से उनको नहीं मिली।
जी उसकी बहुत तारीफ भी हुई थी, कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ कार्यक्रम में कुछ छूट गया हो, लेकिन बहुत कुछ छूट भी जाता है, बहुत कुछ हम समेटते भी हैं। आप इसी तरह सहयोग बनाए रखें।
तो आप पता बता दें।
जी हाँ पता तो मैं बता दूंगा, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो आखिरी चिट्ठी में पढ़ दे।
जरूर जरूर।
ये खरखरी नहर नजफगढ़ से दौलत गौर ने ईमेल भेजा है, नजफगढ़ बिल्कुल दिल्ली के पास ही है। लिखते हैं 21 अगस्त की शाम का कार्यक्रम सुनकर मन गदगद हो गया। कारण बताते हैं कि बहुत साफ ट्रांसमिशन था, आवाज दमदार थी और उच्चारण भी बहुत पसंद आया इनको, साफ था। आगे लिखते हैं, इन्होंने कुछ साथियों के उच्चारण दोष की तरफ ध्यान दिलाया है और फिर लिखा है कि रेलवे में सफाई और सुविधाओं पर सलमान रवि की रिपोर्टों की तारीफ की है, बहुत पसंद आई है उनको ये रिपोर्टें। लिखा है कि रिपोर्ट सुनकर ऐसा लगा कि अगर प्रस्तोता मेरे पास हो तो गले से लगा लूं या नतमस्तक हो जाऊं। क्या बात है, वाह बहुत बहुत शुक्रिया दौलत गौर साहब। सलमान रवि तो आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे, कभी मौका लगे तो हमारे दफ्तर आइए। और अब पता नोट कर लीजिए क्योंकि मुझे आंखें दिखा रही हैं इंदु पांडे। तो पता है हमारा बीबीसी हिंदी सेवा पोस्ट बॉक्स 3035 नई दिल्ली 110003 और ईमेल का पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
चिट्ठियों के बाद इंदु पांडे मेरे सामने बैठी हुई हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं खेल की खबरें बताने के लिए।
जी जरूर, भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे वनडे में भारत ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग की और अब भारत के सामने 236 रनों का टारगेट है। इस मैच के लिए टीम इंडिया में कोई बदलाव नहीं किया गया। पिछले मैच की तरह इस मैच में भी अजिंक्य रहाणे, कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर और मनीष पांडे को अंतिम 11 में जगह नहीं मिली है। और वहीं श्रीलंका की तरफ से कुछ बदलाव किए गए हैं। इस सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम ने 9 विकेट से अपने नाम किया था और इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 5 वनडे की इस सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। तो 50 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 8 विकेट पर 236 रन रहा और बुमराह उन्होंने लिए आज 4 विकेट।
और खबरें हैं।
जी हाँ बिल्कुल, ये है बैडमिंटन, जिसमें कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन चल रहा है। भारत के अजय जयराम ने नीदरलैंड के मार्क काजो को सीधे गेम में हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, लेकिन समीर वर्मा और ऋतुपर्णा दास हार करके बाहर हो गए।
बहुत शुक्रिया, मैं आपको यहाँ वैसे भी रोकने वाला था, वक्त बहुत कम है, भारत में बजने वाले हैं रात के 8, वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का, लेकिन पहले विश्व समाचार एक बार फिर सुनेंगे।
बीबीसी समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने एक अहम फैसले में कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है। भारत के दौरे पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ औपचारिक मुलाकात में 8 समझौतों पर दस्तखत किए गए। म्यांमार में अंतर्राष्ट्रीय आयोग ने सरकार को अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुस्लिमों पर लगे प्रतिबंध हटाने की सलाह दी। स्पेन की अदालत ने पिछले हफ्ते कैटालोनिया में हुए हमले के सिलसिले में पकड़े गए 4 लोगों को कुछ शर्तों के साथ रिहा कर दिया है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुने आपने हरिता कांडपाल से, और कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे शाकिर आलम। फेसबुक के जरिए हमें आपसे जोड़ रही थी मानसी दास। दिन भर में आज इतना ही। हमारा अगला प्रसारण नमस्कार भारत भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।